शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। प्रणमोकार मंत्र और सत्वार सूत्र का मंगलाचरण। बोल सकते हैं सभी लोग एक बार नमोकार मंत्र, फिर ये पूरा मंगलाचरण जो लिखा है कितना सा सबके किताब बने हैं सामने। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरेणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाऊणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्, नेतारम् कर्म भूव्रताम्, ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम्, वन्दे तद्गुणलभे। त्रैकाल्यम् द्रव्य षटकम् नौपद सहितं जीव षटकायलेश्याः, पञ्चाङ्गे चात्तिकाया व्रत संतिगति ज्ञान चारित्र भेदाः। इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमैकैः प्रोक्तम् अर्हर्निरीशैः, प्रत्येति श्रद्धाति प्रशति च महिमानीय तवै शुद्धदृष्टिः। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पते, वन्दितारहन्ते मुच्यम् आराहणा कंसो, उज्जोऽणमुज्जवणम् निर्वाहणम् साहणम् च निःक्षरणम्, दन्तणनाणचरितम् सत्वार सूत्र। महान शास्त्र का यह महान मंगलाचरण है। पिछले कुछ वर्षों पहले यहाँ जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा में हमने सत्वार सूत्र प्रारंभ किया था और प्रतिवर्ष हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इसमें चार अध्यायों तक की चर्चा हम पिछले वर्ष आपके बीच में कर चुके हैं। आज की चर्चा पांचवें अध्याय के संदर्भ में की जानी है। क्या चर्चा है इन चार अध्यायों में? आपको एक साल हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा तो नहीं है, कहीं सपाट तो नहीं हो गया है? इस सत्वार सूत्र में सारा जिनागम भर गया है। इस सत्वार सूत्र में संपूर्ण द्वादशांग का सार आ गया है। सार रूप में संपूर्ण जिनवाणी इसमें समाहित हो गई है। ये कुछ अद्भुत ग्रंथ है। मेरी कुछ बातें पिछले वर्षों की यदि आपको याद हो तो मैं ये कह सकता हूँ, वापस रिपीट करता हुआ ये कहता हूँ कि जैन परंपरा का यदि कोई ऐसा ग्रंथ जो सर्वमान्य हो, सबको मान्य हो, ऐसा कोई ग्रंथ जो ग्रंथ जैन दर्शन और जैन परंपरा को रिप्रेजेंट करता हो, वो ग्रंथ यदि कोई है तो उसका नाम है सत्वार सूत्र। आज हिंदू परंपरा में किसी से भी पूछो कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं का सर्वोत्कृष्ट, सबसे बड़ा, सबसे महान ग्रंथ है, तो तुरंत सामने से जवाब आएगा गीता। सब जानते हैं गीता। यदि हम क्रिश्चियनों की बात करें, क्रिश्चियन रिलीजन की बात करें, कि आपका कोई ऐसा ग्रंथ है क्या जो आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हो, तो तुरंत नाम बतला देंगे बाइबल। ठीक है, ईसाइयों में बाइबल है। और यदि मुसलमानों की बात की जाए कि है कोई ग्रंथ ऐसा जो मुसलमानों के दर्शन को संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता हो तो तुरंत कह देंगे कुरान। लेकिन मुकुंद भाई ये जैन दर्शन का कौन सा ग्रंथ है ऐसा? मुसलमानों में तो कुरान कह दिया, ईसाइयों में तो बाइबल कह दिया, हिंदुओं में तो गीता कह दिया गया, जैनों में कौन सा ग्रंथ है? तो आप कह देंगे आगम, लेकिन आगम एक नहीं। कौन से आगम की बात करेंगे आप? आचारांग की या सूत्र कृतांग की, इष्टानंद की या समवायांग की या व्याख्या प्रगति की? बारे हैं आगम तो, बारे में से दिगंबर परंपरा ये कहती है कि 11 अवेलेबल नहीं है, श्वेतांबर परंपरा ये कहती है कि 12 अवेलेबल नहीं है। किसको माने? उत्तराध्यायन को माने या दसवें कालिक को, किसको स्वीकार करें? कुछ ऐसे हैं जिनको दिगंबर परंपरा मानती है, श्वेतांबर नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं जिनको श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। अब क्या करें? आप किसी ऐसे ग्रंथ का नाम बतलाओ जिसमें पूरा का पूरा जैन दर्शन का मर्म भी आ जाए और सभी जैन स्वीकार भी करते हैं, उसको ही तो कह सकते हैं अपन। तो कौन सा ग्रंथ होगा? पूरे तत्वार सूत्र। आपने यदि किसी नॉन जैन को तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए दे दिया, तत्वार सूत्र की व्याख्याएं उस व्यक्ति ने पढ़ी, इसका मतलब ये है उसने सारा जैन शासन पढ़ लिया। ये वो महान ग्रंथ है जिसमें सारे टॉपिक हैं, हर सब्जेक्ट पर कलम चलाई गई है, सारे टॉपिक सारी चर्चाएं जिस ग्रंथ में आ गई, वो ग्रंथ कितना बड़ा होगा? अरे भाई साहब बहुत बड़ा होगा। तो यदि 1,00,000 पेज से कम तो नहीं हो सकता जिसमें सारे जैन दर्शन की बात आ जाए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा शॉर्ट में बताओ। तो भाई 5,000 पेज से कम तो नहीं होगा, 5,000 भी बहुत होते हैं। किसके पास फुर्सत है आज 5,000 पेज पढ़ने की? सुनो, 5,000 पेज नहीं, पूरे जैन शासन की चर्चा इसमें है और ये ग्रंथ है 5 पेज में। कितने पेज हैं चंद्र भाई? 5 पेज, 5 पेज में चला गया। ये तो शॉर्ट है, मतलब ये पेज छोटा है, समझ लो आप। तो इसके पेज के ऊपर यदि लिखो इसको तो 5 पेज के अंदर पूरा ग्रंथ आ जाता है। इसका मतलब कम से कम लिखा और ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, ऐसी उमा स्वामी आचार्य की रचना है। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व के वर्णन की चर्चा हम पढ़ चुके हैं। जीव तत्व मंगलाचरण इसका अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि झगड़ा ही नहीं है किसी बात का। हम यदि महावीर भगवान को याद करें तो सामने से आएगा कि मैं नहीं मानता, मैं तो आदिनाथ का भक्त हूँ। हम यदि आदिनाथ भगवान को नमस्कार करें तो सामने से कोई कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो पार्श्वनाथ का भक्त हूँ, कोई कहेगा मैं शांतिनाथ भगवान का भक्त हूँ। अब क्या करें? किसको माने, किसको नमस्कार करें? इतना स्ट्रॉन्ग मंगलाचरण दिया कि तुम जिसको याद करो तुम सीमंदर भगवान के भक्त हो। बोले ये जो 2 लाइने है ना, इसमें सीमंदर भगवान को नमस्कार किया है। तुम यदि महावीर भगवान के भक्त हो, बोले इसमें महावीर भगवान को नमस्कार किया है। तुम यदि बाहुबली के भक्त हो तो इसमें बाहुबली को नमस्कार किया है। तुम 20 तीर्थंकरों की बात करो, बोले इसमें 20 तीर्थंकर आ गए। तुम 24 तीर्थंकरों की बात करो, इसमें 24 तीर्थंकर आ गए। ऐसे कौन तीर्थंकर और कौन परमात्मा है जिनको नमस्कार इन 2 लाइनों में नहीं किया गया हो? नाम किसी का नहीं और वंदन सबको हो गया, चर्चा किसी की नहीं। भाई साहब जैन परंपरा में व्यक्तिवाद बहुत घातक है, व्यक्तिवाद बहुत खतरनाक है। रमेश भाई, जहाँ व्यक्ति खड़े हो जाते हैं वहाँ संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, वहाँ टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ बंटवारे हो जाते हैं, वहाँ विवाद हो जाते हैं। सारे झगड़े मिट जाए, क्यों? क्योंकि इन्होंने कह दिया मोक्ष मार्ग से नेतारम, बात खत्म। हमारा वंदन उसको है जो मोक्ष मार्ग के नेता हो, हमारा वंदन उसको है जो भेदतारम कर्म उग्रताम, जिन्होंने कर्म पर्वतों को भेद दिया हो, और हमारा वंदन उनको है जो ज्ञातारम विष्णु तत्वानाम, जो सब कुछ जानने वाले हूँ, वंदे वंदन करता हूँ। तुम क्यों वंदन कर रहे हो इनको, इनको क्यों वंदन कर रहे हो? आशीर्वाद मिलेगा इनका, इनको क्यों वंदन कर रहे हो तुम? कुछ तो मिलेगा साहब। सदगुण लब्ध है, बस एक ही प्रयोजन है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, क्या चाहिए? सदगुण, आप जैसे गुणों की प्राप्ति, और कुछ नहीं। लब्ध है, प्राप्ति के लिए वंदन कर रहा हूँ। कैसे होगी आप जैसे गुणों की प्राप्ति? कैसे होगी? हाथ जोड़ने से। भगवान को हाथ जोड़ लिए, कितने लोग आते हैं आपके यहाँ जैन सेंटर में और हाथ जोड़ के चले जाते हैं? हमारे यहाँ जैन मंदिर तो आप सुबह के समय चले जाओ भारत में किसी जैन मंदिर में, तो इतने दर्शन करने वाले होते हैं कि आप गिन नहीं सको उनको। आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्या वंदे वंदे वंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, क्या भला होगा बताओ? अब तो पार हो जाएंगे ना, भगवान की चरण में आए हैं तो भगवान पार लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ये भगवान पार नहीं करेंगे, ये पार नहीं उतारते हैं। क्यों नहीं उतारते हैं? क्योंकि ये हाथ से हाथ धर के बैठे हैं। हमारे भगवान हाथ से हाथ धर के बैठे हैं। हाथ से हाथ धर के बैठे रहने का मतलब ठाले बैठे हैं, काम नहीं है कुछ भी, कोई काम नहीं, कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, भक्तों का भला नहीं करते। पुरुषार्थ ही नहीं क्या? कि सुनो, ज्ञाता दृष्टा है, इसका नाम है पुरुषार्थ। महेंद्र भाई, ज्ञाता दृष्टापन सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है, इससे बड़ा पुरुषार्थ जगत में कुछ नहीं है। इसको लगता है मैं ज्ञाता दृष्टा रहूंगा तो पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा, तो लगता है कोई तो काम बताओ, कुछ तो काम बताओ मेरे को, उठना बैठना चलना हाथ पांव हिलाना थोड़ी एक्सरसाइज करना, इसको लगता है थोड़ा किया मैंने कुछ। इसको सामान यहाँ से उठा करके यहाँ ला तो इसको लगता है कुछ किया, और हम इसको कह दें कि कुछ नहीं करना है बैठ जाओ, तो इसको लगता है अब मैं क्या करूँ, तो शांति से बैठ नहीं सकता, ये काम नहीं, ये काम नहीं दिखता है। शांति से बैठना भी कोई काम हो सकता है क्या? अरे बहुत बड़ा काम है कि नहीं? नहीं, ये तो निठल्ले लोगों का काम है, ये तो फालतू लोगों का काम है। फालतू लोगों का काम नहीं कह रहा, असली पुरुषार्थ का काम है ज्ञाता दृष्टा रहना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और हमारे परमात्मा ज्ञाता दृष्टा है, इसका मतलब ये अनंत पुरुषार्थी है। ये ज्ञाता दृष्टापन का पुरुषार्थ समझ में नहीं आता आपको? ये कैसा पुरुषार्थ होता है बोलो? ऐसा रोड पर जा रहे हो, सुनसान रोड हो, देखने वाला कोई नहीं हो, और रोड पर चलते हुए आपको $100 का नोट रोड पर पड़ा हुआ दिखे, बोलो उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में पुरुषार्थ है? बोलो किसमें पुरुषार्थ है? नहीं उठाने में आपको कितना कमर झुकानी पड़ी, नहीं उठाने में आपको क्या करना पड़ा, ये बताओ। आप पुरुषार्थ की बात बता रहा हूँ, खाली जाना बस, जाना और जान करके अप्रभावित रहे, जान करके उससे प्रभावित नहीं हुए, जान करके उससे दूर रहे, इतने मात्र का नाम है पुरुषार्थ। इसको लगता है कुछ करूं तो पुरुषार्थ होगा, मैं झुकूंगा उठाऊंगा रखूंगा जेब में रखूंगा, ये तो लगता है कुछ किया, कुछ नहीं किया, देख करके चले गए। वैसा भी कुछ नहीं करने में कितना पुरुषार्थ है बताओ? सारा जगत करने करने में पुरुषार्थ समझता है, हमारा जैन दर्शन नहीं करने में पुरुषार्थ कहता है। हमारे परमात्मा कुछ नहीं कर रहे हैं, और वंदे तदगुण लब्धे, ये कला हमारे को सीखनी है, क्योंकि कर करके मरे जा रहे हैं, मरे जा रहा है कर करके, और कुछ कर तो सकता नहीं, कुछ कर पाया नहीं आज तक, क्या हुआ? करना बंद करो और ज्ञाता दृष्टा रहो। ज्ञाता दृष्टा रहना ये स्वभाव है, और स्वभाव में रहना ये परमात्मा बनने का मार्ग है। जो जीव परमात्मा बनना चाहते हैं, जो जीव मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो जीव ये चाहते हैं कि हे जिनेंद्र देव आप जैसे पद की प्राप्ति हो, तो कैसे होगी कि जो काम आपने किया है वो काम मुझे करना पड़ेगा, जो काम आप कर रहे हो वो काम जब मैं करूँगा तो आप जैसा बन जाऊंगा। क्या करे विश्वास, आप जैसा बनने के लिए क्या करें? जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम करो। भगवान से पूछा, हे भगवान मुझे आप जैसा बनना है, रास्ता बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, आप जैसे बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कि मेहनत नहीं करने में मेहनत लगाओ, क्या कहेगा? मेहनत करने में मेहनत नहीं, नहीं करने में मेहनत लगाओ, उसमें पुरुषार्थ चलाओ। ये सारा जगत का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, ये ऐसे है हमारे परमात्मा। भक्तों का भला नहीं करते और ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव से रहते हुए भक्तों को बता देते हैं भगवान बनने का मार्ग क्या है। इसलिए वंदे सदगुण लब्धे, ऐसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदन करता हूँ। सुनो, आपको बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया जाए और सारा काम आपको करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? हाथ जोड़ देंगे, भाई साहब मुझे नहीं चाहिए ऐसा। बोलो, आपको यहाँ का जैन सेंटर का प्रेसिडेंट बना दिया जाए और फिर ये कहे भाई साहब प्रेसिडेंट आपको बना दिया गया है, अब सारी जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी की जिम्मेदारी आपकी है, सब तो समेटने की जिम्मेदारी आपकी है, लॉक कटाना, लॉक खुलना आपको देख रही है। बोले भाई साहब आज तो बन गया हूँ, आगे से नहीं करना। पद तो चाहिए लेकिन कौन सा पद चाहिए? जिस पद में प्रतिष्ठा तो हो, जिस पद में मान सम्मान तो हो, लेकिन जिस पद में करना कुछ नहीं पड़े। बोलो प्रेसिडेंट भाई कैसा पद चाहिए? ऐसा पद जिनमें जनता देख करे और फिर उसके बाद भी जज नहीं मिले, सब काम करने पड़े, ऐसा नहीं चाहिए हमारे, तो फिर कैसा चाहिए ये बताओ। ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे जिनेंद्र भगवान जैसी दशा आपकी है, जैसी दशा मेरी हो जाए, आप जिस तरह से अकर्ता है ऐसे अकर्तापन का पुरुषार्थ मेरे में प्रकट हो जाए, इस भावना से आपको वंदन करता हूँ। ये है कुछ बात अलग अच्छे, ये परमात्मा बनने का मार्ग बतलाया है। तो फिर कैसे ज्ञाता दृष्टा रहा जाए, किससे ज्ञाता दृष्टा रहा जाए, ज्ञाता दृष्टा कौन रहेगा, जिसे ज्ञाता दृष्टा रहना है उसका स्वरूप क्या है, तो फिर सात तत्व बतलाए, फिर उनकी चर्चा यहाँ पहले चैप्टर में की, सब चर्चा की जा चुकी है पीछे, मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, सीधा पांचवे की तरफ बढ़ूंगा। इस पहले चैप्टर में चर्चा की उन्होंने पांच प्रकार के ज्ञान की, सात तत्व बतलाए, ये पांच प्रकार के ज्ञान की चर्चा, बस इतना सा है पहला चैप्टर, पांच प्रकार के ज्ञान, मति श्रोत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, मति ज्ञान क्या है, सदिंद्रिया निमित्त मति ज्ञान के भेद प्रभेद बतला दिए, 336 भेद मति ज्ञान के बतला दिए, श्रुत ज्ञान बतला दिया, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम अवधि ज्ञान बता दिया, मने पर्याय ज्ञान बतला दिया, उनके भेद बतला दिए किसके होता है, उनके विषय बतला दिए, केवल ज्ञान का स्वरूप बतला दिया। ये पांच प्रकार के ज्ञान की चर्चा करते हुए फर्स्ट चैप्टर खत्म, ये पहले चैप्टर की चर्चा हुई, इतनी चर्चा है पहले अध्याय में। अब पांच प्रकार के ज्ञान आपके ज्ञान में है या नहीं है? आपके ज्ञान में पांच प्रकार के ज्ञान है या नहीं है? नहीं है। अरे आपके ज्ञान में पांच प्रकार के ज्ञान का विषय है या नहीं है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? यदि नहीं हो तो पहले चैप्टर से दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, और पहले चैप्टर से दोबारा पढ़ाऊंगा तो जिंदगी भर पहला ही चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, क्या होगा बताओ, आगे कब बढ़ेंगे अपन? तो पांच प्रकार के ज्ञान हो गए। अंतिम सूत्र में चर्चा की थी सात प्रकार के न्याय की, 33वां सूत्र था पहले अध्याय का, जिसमें नैगवा की सात नयों की चर्चा हुई, बहुत विस्तृत और मार्मिक चर्चा है। क्षेत्र सेकंड, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है अभी। पहले अध्याय में जीव तत्व की चर्चा की, दूसरे अध्याय में पुनः जीव तत्व की चर्चा करना प्रारंभ किया और पांच प्रकार के भावों से चर्चा हुई। पांच भाव जानते, कितने भाव हैं आपके? अरे भाई कितने भाव हैं, कितने भाव हैं?
दो।
शुभ और अशुभ पांच ही औदयिक भाव और क्षमिक भाव, शाही भाव, शायोक्षमी भाव, सब मिलकर के तो पूरा कर दिया, सब मिलकर के तो पांच भाव हो गए। ये पांच भाव, इन पांच भावों के भेद प्रभेद। फिर ये जब चर्चा इतनी चल रही थी तो शिष्य ने एकदम अचानक प्रश्न किया कि साहब आप जीव तत्व का वर्णन कर रहे हो महाराज, इतना तो बदला दो। तो यार गजब हुई, इतनी चर्चा मैंने तेरे सामने की और तुझे इतना सा नहीं पता जीव होता कौन है। चल तुझे बताता हूँ, उपयोगो लक्षणम, ये जीव है। क्या पांच पांच की चर्चा हुई है इस सेकंड चैप्टर में, पांच प्रकार के भाव। फिर उपयोगो लक्षणम कहा, जीव का लक्षण उपयोग है, ये उपयोग क्या होता है? उपयोग माने हैं ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जानना देखना ये उपयोग, उपयोग माने यूज नहीं, इसका उपयोग करो, ये यूज करने का नाम उपयोग नहीं, जानने देखने का नाम उपयोग है, जानने देखने को उपयोग कहते हैं। करो आप उपयोग, किसका उपयोग करना है? जानन पना, बस यही उपयोग है। ये चर्चा हुई, फिर पांच इंद्रियों की चर्चा हुई और पांच प्रकार के शरीर की चर्चा हुई, ये सेकंड चर्चा। देखो भाई कुछ पढ़ा रहा हूँ तो फिर पूछूंगा भी, लेकिन नहीं पूछने का नतीजा है सच में। महेंद्र भाई से चर्चा हुई थी मेरी आज, और उस चर्चा में हमने डिक्लेयर किया है कि इस बार एग्जाम देंगे, इस बार ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम देंगे इस बार, तैयार एग्जाम देंगे। तो आपको इसे चार अध्याय के पीछे के हैं वो सब आपको पूरे पता होने चाहिए। इनमें पहले मैं क्या बताया, फर्स्ट चैप्टर में पांच प्रकार के ज्ञान, पांच ज्ञानों की चर्चा के फर्स्ट चैप्टर में हुई। सेकंड चैप्टर में सुनना ध्यान से, तीन बातें महत्वपूर्ण है सेकंड चैप्टर में, पांच प्रकार के भाव, पांच इंद्रियां और पांच शरीर, पांच भाव, पांच इंद्रियां और पांच शरीर, ये चर्चा किसने? सेकंड दूसरे अध्याय में, ठीक है याद रखना। फिर तीसरे अध्याय में चर्चा हुई, वो चर्चा है नरक माने अधोलोक और मध्य लोक, दो चर्चा है, नरक लोक की चर्चा और मध्य लोक की चर्चा, ये चर्चा हुई है थर्ड चैप्टर में। फिर फोर्थ में चर्चा हुई स्वर्गों की, वैमानिक देवों की, ज्योतिष देवों की, चार प्रकार के देवों की, ये देवगति की चर्चा ये हुई है चौथे अध्याय में। तो इस तरह जीव तत्व का वर्णन कर दिया चारों गतियों तक का वर्णन करते हुए, और अब चर्चा शुरू करते हैं अजीव तत्व के बंधन। आओ हाँ बोलिए। सम्यक दर्शन सही बात है, दो ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको सबसे पहले लिख करके उनको नींव डाल दी, फाउंडेशन, इसको उनका पूरा महल खड़ा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है, सारा महल इसके ऊपर खड़ा है। और इन तीनों में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में भी दंशन मूलो धम्मो, श्रद्धा इम्पोर्टेंट है। श्रद्धांत का महत्व तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा श्रद्धांत का महत्व, श्रद्धा कितनी इम्पोर्टेंट है, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा की कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, इसका पता लगेगा आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है हमारे को, तुमसे तो समय लेकिन भरोसा के ठीक हो नहीं है आपको भरोसा, कि भरोसा कितना इम्पोर्टेंट है बताओ मेरे को, आपको भरोसा है कि मैं अगर मरू, दिल से हाथ रख करके कहना, बोलो आपको भरोसा है, वाणी में तो सब कह देंगे तुम कौन हो, मैं तो आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ मैं तो, वाह आत्मा हूँ। अगर यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने पर पैर फिसल जाए, अरे बच गया, मरते मरते बच गया, ठीक क्या होगा, मरते मरते बच गया, तू तो अनादि अनंत है, तू तो मरता ही नहीं है कभी, फिर वो तो प्रवचन की बात थी, सिखा दिया हमारे को। पंडित जी पूछिए तो क्या जवाब देना, बोले मैं आत्मा हूँ। प्रवचन में कोई बात करे तो क्या बताना, मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। और वैसे बोले वैसे तो बस मंदिर की बात मंदिर में, इस बात का भरोसा होने का नाम है मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, इस बात के भरोसे का नाम है कि भगवान बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ गया, ये भरोसा। इसलिए बात की सही सही आपने महेंद्र भाई, आपकी बात बिल्कुल बराबर है। इस पूरे तत्वार सूत्र में यदि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इसलिए अपनी जो ये चर्चा चल रही है, ये चर्चा तत्वार्थ श्रद्धान की चल रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब जो पहला दूसरा सूत्र इम्पोर्टेंट है तो पांच हजार अध्याय से क्यों जा रहे हैं, पढ़ाओ ना इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाओ ना, वही तो पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने जीव तत्व की बात पढ़ाई, अब अजीव तत्व की बात पढ़ा रहे हैं। और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व श्रद्धा की बात है, तत्व और अर्थ की श्रद्धा करी, जीव तत्व की श्रद्धा की बात हुई, अब अजीव तत्व की श्रद्धा की बात करें। देखिए पांचवा अध्याय भरोसे की चर्चा है, तब भरोसा करना, आपको भरोसा है कि अजीव नाम का तत्व है कोई, जो दिखते हैं वो सब अजीब, सही बात है, जो दिखते हैं वो सब तो अजीब है ही, बहुत से अजीब नहीं दिखने वाले भी हैं, वो भी अजीब। देखो यहाँ लिखते हैं पांचवें अध्याय का पहला सूत्र, ठीक है ना, पांचवा और छठा दो करेंगे कि अपन कितने सेशन मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं है, अपन इसकी पाठ योजना बना लेंगे कि कितने कितने सूत्रों को एक एक सेशन में अपन ले लें, जिससे कि पांचवें और छठे अध्याय की चर्चा पूरी हो सके, ठीक है, ऐसी ऐसी योजना बना लेंगे, कितने पीरियड मिल रहे हैं अपने को इस सब्जेक्ट के लिए, है ना, फिर समय सार के लिए कितने मिल रहे हैं, फिर सैटरडे संडे वीकेंड में क्या लेना है, वो पूरी बना लेंगे चर्चा। अभी देखिए दो चार सूत्रों की चर्चा करेंगे अपन, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, क्या क्या कहा है यहाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, अजीव अजीबों की चर्चा कर, काया कायावान अजीबों की चर्चा कर रहे हैं, काया मानी क्या, शरीर शरीर की चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ काय शब्द का प्रयोग बहुप्रदेशी के अर्थ में किया गया, बहुप्रदेशी द्रव्यों को कायवान कहते हैं, काय माने बहुत प्रदेश जिसके हो, किस किस के बहुत प्रदेश है उनकी चर्चा के लिए, प्रदेश समझते हैं आप, कौन से प्रदेश में रहते, आप कौन से प्रदेश में रहते, फ्लोरिडा में, अमेरिका में, फ्लोरिडा में रहते हैं आप, उस प्रदेश में रहते हैं आप, नहीं, आप मना कर रहे हैं। आप बताइए, आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, बाहर से हैं? हाँ, ये दूसरे प्रदेश है कोई। कौन से प्रदेश से? कोई तो पूछ रहा हूँ, कौन से प्रदेश में रहते हैं? कोशिका है। कौन से प्रदेश में साहब? आप पीछे क्यों बैठे हैं? पीछे पर बैठा करो, आप आगे बैठा करो। ये प्रदेश कहते हैं एरिया, प्रदेश माने एरिया। हर वस्तु का अपना अपना एरिया है, इलाका। बंबई की भाषा में कहें तो अपना इलाका है, और इलाके के बाहर मतलब वाणी चलती है अपनी, सबके अपने अपने इलाके में चलती है। अपने एरिया में कहते हैं कहावत चलती है बंबई में, शहर में, लोगों में, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, ऐसे कहते हैं अपने इलाके में। तो अपनी कहाँ चलती है? तो आचार्य देव कह रहे हैं तेरी भी तेरे इलाके में चलती है। अब अपना इलाका कौन सा है, अपना प्रदेश कौन सा है, अपना एरिया कौन सा है? तो अपने असंख्यात प्रदेश वो अपना एरिया है। सब द्रव्यों का अपना अपना एरिया है। जीव द्रव्य का अलग है, उद्गल द्रव्य का अलग है, धर्म द्रव्य का अलग है, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इन सब के एरिया अलग अलग है। सेपरेट एरिया में रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, अपनी बाउंड्री है सबकी। तो इनमें इन्होंने कहा धर्म अधर्म, धर्माधर्म लिखिए, धर्म अधर्म, आकाश और उद्गला। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गला, पुद्गल द्रव्य। और इसके बाद में दिया द्रव्याणी, तो ये सब द्रव्य हैं। इनके जो नाम बतलाए हैं ये सब क्या है? द्रव्य हैं। द्रव्य कौन कौन से हैं? तो इन्होंने शुरू किया धर्म द्रव्य। धर्म एक द्रव्य है, अधर्म एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है और पुद्गल एक द्रव्य है। क्या कहा है? बोली अजीब भी हो और कायवान भी हो, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं रमेश भाई। कुछ कोई बात आपके समझ में आए थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझना, हंसी हंसी में बात निकल नहीं जाए। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इस सूत्र में द्रव्य नहीं बताए हैं, इस सूत्र में द्रव्य नहीं बताए हैं। द्रव्य बताए होते तो छह बताते, द्रव्य होते तो छह बताते, काल नहीं बताए। काल नहीं बतलाया, क्यों नहीं बतलाया? क्योंकि वो कायवान नहीं है, कालानु कायवान नहीं है, कालानु का शरीर नहीं है, कालानु का विस्तार नहीं है, कालानु के प्रदेश नहीं है, कालानु बहुप्रदेशी नहीं है, कालानु कायवान नहीं है। समझ में आ रही है आपको? कालानु कायवान नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना आप। अब क्योंकि वो कायवान नहीं है इसलिए उसको यहाँ शामिल नहीं किया है। तो फिर जीव तो है ना साहब, इन्हें पहले चर्चा अजीव की थी। दो बातें भी, अजीव भी हो और कायवान भी हो। रमेश भाई क्या क्या? अजीव भी हो और कायवान भी हो, ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं? बोले धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये चार हैं। याद रहना, थोड़ा सा परिचय होना चाहिए अपने को। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ और कौन कौन रहता है इसका परिचय होना चाहिए कि नहीं? यदि परिचय नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी आप सोसाइटी से बाहर निकले और वो व्यक्ति खड़ा हो और आपका परिचय नहीं था तो आप उसे पकड़ोगे, यार आप कौन हो, यहाँ कहाँ से आ गए आप, कहाँ घुस गए आप, कहाँ चले आ रहे हो हमारी सोसाइटी में? आप उसको चोर कह सकते हो, आप उस पर इल्जाम लगा सकते हो। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ और कौन कौन रहता है? बोले वहाँ धर्म भी रहता है, वहाँ अधर्म भी रहता है, वहाँ आकाश भी रहता है, वहाँ पुद्गल भी रहता है, बोले तुम कौन हो, हम नहीं रहते क्या इस सोसाइटी में? बोले रहते हैं ना, तीन नंबर के सूत्र में कहा जीवा के, जीव भी रहता है, मान जीव भी है और बाकी सब भी है, बाकी सब अजीव थे जिनकी चर्चा यहाँ। चलिए कुछ कुछ स्वरूप इनका देखिए, अपन इनके बारे में क्या क्या बातें कहना चाहते हैं, धर्म है ना आपके पास में, क्या 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 धर्म कौन कौन सा धर्म है? जैन धर्म, बुद्ध धर्म, तो ये तो द्रव्य बता रहे हैं यहाँ, ईसाई धर्म द्रव्य है, जैन धर्म द्रव्य है, क्या होगा? जैन द्रव्य की खबर नहीं होगी तो कुछ करने नहीं पड़ेगा, जिंदगी जारी है। छह द्रव्यों के नाम याद करो, छह द्रव्यों का स्वरूप याद करो, निकल रही है जिंदगी। सच कह रहा हूँ, कुछ हाथ नहीं आएगा, सब पड़ा रहेगा, ये सारे के सारे डॉलर पड़े रहेंगे और उन डॉलरों को लेकर के झगड़ेंगे घर परिवार के चार बच्चे होंगे तो आपस में, कितना पैसा है, कितना पैसा है, पैसा पैसा दिखाई देगा, हाय पैसा, हाय पैसा लगी रही है। ये कुछ कर लो, कुछ करने योग्य काम उसमें नहीं है दम कुछ भी। अरे पैसा दे करके भी यदि आपके संबंध बना रहे तो पैसे से महत्वपूर्ण है संबंध, और संबंध से महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना और अपने आप को पहचानना। कुछ बात कह रहा हूँ मैं भाई साहब, ये छह द्रव्य सात तत्व हमने नहीं जाने जैन कुल में पैदा होकर के, तो क्या किया हमने? बर्बाद किया हमने अपनी उम्र के 70 साल बर्बाद कर दिए हमने, छह द्रव्य का पता नहीं है हमारे। बोलो द्रव्य का पता है आपको? कि हाँ द्रव्य का तो पता है, तो द्रव्य का पता है। अरे उस द्रव्य का पता नहीं करना है, इस द्रव्य का पता करना है। इस दुनिया में छह जाति के द्रव्य हैं, उनका पता करना है। ये छह द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं इस पांचवे अध्याय में, थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ी खबर होनी चाहिए। भैया आपको पता है क्या छह द्रव्य? नहीं पता है, खबर करना क्या? आज आप आए, मेरे को आज नहीं दिखे आप, इसलिए कोई बात नहीं, ये तो पुराने है ना, इसलिए मैं थोड़ा डांट भी सकता हूँ, जाएंगे कहाँ। मेरा कहने का, आपको छह द्रव्य के नाम नहीं पता, आपको छह द्रव्य का स्वरूप नहीं पता, आपको ये पता है कि आप कौन हो? सही बात तो ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या कहते हो? हमें अपने आप का पता नहीं है, और क्या पता है आपको? इसका तो पता है हमारे को, वो वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, कौन सी टीम का मैच कहाँ कब होना है, उसका तो पता है। क्रिकेट का शौक है आपको, है ना? कल क्या हुआ मैच में आपको है भाई साहब? पीछे क्रिकेट सारी दुनिया की खबर रखते और पूछो अपने आप की खबर है क्या? अपने आप की खबर है, हूँ ना ये, बस आईने के सामने खड़े होने पर जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ, और कौन? मैं कितना सुंदर दिख रहा, पहले थोड़ा कमजोर हो गया ना मैं। अरे तू कभी कमजोर नहीं होता, वो तत्व है। ये छह द्रव्य कौन है, इन छह द्रव्यों का स्वरूप क्या है, ये छह द्रव्य एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात के भरोसे की चर्चा चल रही है। ये भरोसा दिला रहे हैं कि हमारे अलावा भी कोई तत्व है दुनिया में, और भी द्रव्य है, अपनी पूरी हैसियत से रहते हैं, पता होना चाहिए हमारे को इस बात का। एक अजीव नाम का तत्व है, एक जीव तत्व, एक अजीव तत्व, दोनों तत्वों को पहचानो। तो अजीव को पहचानना है, हमने दर्शन की प्राप्ति के लिए रमेश भाई जीव को जानना है कि अजीव को? दोनों को जानना है, तो एक बात बतला दो, दोनों को जानना है तो शास्त्र के आधार से जाने के अनुभव से जाने क्या करना पड़ेगा? बोलो कुंदन, शास्त्र के आधार से या अनुभव से? बहुत सुंदर जवाब, शुरुआत शास्त्र आधार से करनी पड़ेगी, फिर शास्त्र में जो बात पढ़ी हो वो बात अनुभव के लेवल पर आती है या नहीं, वो बात फील होती है या नहीं, तो काम चलेगा। कहाँ से शुरू करना? शास्त्र से शुरू करना, सबसे पहले तो शास्त्र के आधार से छह द्रव्यों को जान रहे हैं हम। द्रव्य कितने? छह द्रव्य। जीव कितने? उदाहरण तो फिर द्रव्य क्या कहते हुए जाति की अपेक्षा छह है, संख्या की अपेक्षा अनंत है। क्या द्रव्य जाति की अपेक्षा से छह है और ये द्रव्य संख्या की अपेक्षा से अनंत है। इनमें जीव द्रव्य बतलाओ, जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है? जीव द्रव्य कितने हैं? बोले अनंत। उद्गल कितने हैं? अनंत। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। बोले हाँ बाबा, हम तो पहले ही कहते थे धर्म तो एक ही है बस। आ जाते लोग बात, हम जो कहते थे सब धर्म एक ही है, आप ये मत करो कि जैन अलग है और ये अलग है और ये अलग है, आप जाने मत तुम जाओ। आज पंडित जी ने भी कह दिया धर्म द्रव्य कितने? बोले एक। बोले धर्म एक ही है। अरे धर्म द्रव्य एक ही है, धर्म भी एक ही है, धर्म द्रव्य एक है। ये द्रव्य है, इस धर्मवादिक द्रव्यों को पहचानने का नाम है धर्म, और वो धर्म भी एक ही है। श्रीमद जी के शब्दों में कहें तो क्या कहा है, एक हो तरण काल वहां एक ही बन। इसका कहने की यही धर्म का कि हाँ, बाद में यही धर्म होगा कि हाँ, अनादि अनंत धर्म तो एक ही है, धर्म का स्वरूप भी एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं। धर्म का स्वरूप बदल जाए, ऐसा जो बदल जाए वो धर्म नहीं है। उस धर्म की चर्चा हम बाद में करेंगे, फिर करेंगे, अभी तो धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। संख्या कितनी? एक। कुछ याद होता जा रहा है कि नहीं? नहीं होता जा रहा हूँ, नोट करते रहना। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। और अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। और आकाश द्रव्य कितने हैं? एक। और काल द्रव्य कितने हैं? अनंत। असंख्या, असंख्या। ये आएगी चर्चा इसमें आगे, इसमें संख्याओं की भी कुछ बात कही है, प्रदेशों की भी कुछ बात कही है, ये सब चर्चाएं आगे आने वाली है। आकाश भी और कुदगल भी, धर्म अधर्म आदि भी, इन सबको अपन जानेंगे। थोड़ा थोड़ा सा यही समझा रहे हैं। हम उमा स्वामी आचार्य को पढ़ा दो, कोई बात नहीं समझ में आ रही। महाराज हम तो उतना ही जानते हैं जितना आप पढ़ाओगे, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना तो जान लो। देखो द्रव्याणी हो गया, जीवाश्य हो गया, अब इसके बाद पांचवा सूत्र, पांचवे नहीं कौन सा सूत्र, चौथा, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। बोलो बोलो, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य अवस्थित और अरुचि है कौन, ये सब जिनकी चर्चा। हाँ बोलिए। ओ केंद्र का नाम नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, केंद्र का नाम बता दो, का नाम द्रव्य, पहले द्रव्य का नाम जो बोलेगा उसी को याद होगा, और याद नहीं होगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा आज। नहीं बिल्कुल, प्लेट उठाने के पहले पूछेंगे केंद्रली के नाम, केंद्रली के नाम बताओ, और नाम बताएंगे तो आपको प्लेट मिलेगी, और फिर थोड़ा स्वरूप बतलाएंगे तो उसमें भोजन मिलेगा। यार रहने दो यार, अपन तो आज भोजन ही नहीं करेंगे, अपना तो गया है। सरल बातें, पहला द्रव्य का नाम जीव, जीव द्रव्य। दूसरे द्रव्य का नाम नहीं, उद्गल, अजीव नहीं है द्रव्यों में। दूसरे द्रव्य का नाम उद्गल, पहले द्रव्य का नाम जीव, दूसरा उद्गल। दो याद हो गए, दो तो याद हो गए ना, सबको याद हो गए, दो तो जीव और उद्गल। तीसरे द्रव्य का नाम धर्म, तीसरे द्रव्य का नाम भैया धर्म, चौथा है अधर्म, जीव पुद्गल धर्म और अधर्म चार हो गए। पांचवा है आकाश, पांचवें द्रव्य का नाम आकाश और छठे द्रव्य का नाम है काल। पांचवें और छठे का नाम बोलो तो आकाश और काल, आकाश और काल उनका भी अस्तित्व है। और चौथा क्या था है? और अधर्म और तीसरा धर्म, पहला आप बोलो आप जी, दूसरा नंबर तीन धर्म, धर्म नंबर चार आपका तो गया खाना आज, मैं चाहता हूँ जाए नहीं, आप मेरे साथ बैठना आज। पहला घबराओ, घबराने का क्या काम है, आप कौन हो ये याद रखो। वैसे जी पहला हो गया, दूसरा उद्गल जीव उद्गल, फिर धर्म अधर्म, धर्म अधर्म पहला जीव उद्गल, फिर धर्म अधर्म और फिर आकाश काल। दो दो के ग्रुप बना लो, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, आकाश काल का ना का उससे शुरू करना आगे वाला काल, आकाश काल ठीक है। चलो धर्म और अधर्म की व्याख्या आज इसमें आई, धर्म अधर्म की व्याख्या 17 नंबर के सूत्र में आई, लेकिन महेंद्र भाई कह रहे अभी बता दो फिर आए नहीं आए पता नहीं। हाँ थोड़ा सा सही बात, सही बात। चलो जीव, जीव की बात करो सबसे पहले, जीव कौन है, जीव कौन है, जीव होता क्या है, जीव ये समझ में नहीं आता मेरे को, जीव क्या होता है, चींटी जीव होता है कि मच्छर जीव होता है, दोनों ही जीव है, चींटी और मच्छर जीव है, तो हम थोड़ी ना चींटी मच्छर है, हम तो जीव ही नहीं होंगे। आत्मा, आत्मा जीव है, आत्मा माने जीव, आत्मा आत्मा का मतलब ही जीव होता है, आत्मा और जीव पर्यायवाची ठीक है। चेतना जिसमें हो, ज्ञान दर्शन जिसमें हो, उसका नाम है जीव। इस जीव जीव की पहचान होना बहुत जरूरी है, जीव जीव वाला पाठ पढ़ना, इसमें बालभूत पाठ वाला भाग है, इसमें जीव किसे कहें अजीव किसे कहें, ये जीव अजीव की खबर नहीं है। अभी अभी आपने चींटी को जीव कहा, आपने मच्छर को जीव कहा, मुकुंद भाई ऐसा नहीं है, बहुत गलत सही है। हम बताओ हाथी जीव है या जीव, ये साल बहुत लड़पला है जवाब, बच्चों का जवाब है जो बड़ों को आना चाहिए, वेद विज्ञान होना चाहिए भाई साहब। हाथी जीव है या अजीव, जब ये प्रश्न किया जाए तो मुकुंद भाई इसका जवाब क्या होगा, हाथी का शरीर अजीव है और हाथी में आत्मा जीव है, ये जवाब आएगा महेंद्र भाई। हाथी जीव कहने से काम नहीं चलेगा, हाथी को यदि आप जीव समझेंगे तो फिर एक समस्या खड़ी होगी, जीव निकल जाने पर जो डेड बॉडी पड़ी हुई है पूछा ये क्या है, ये हाथी है, हाथी है या नहीं, शरीर है हाथी, जीव कौन था, बोले जीव इसके अंदर था, वो जीव निकल गया, जीव बहुत पावरफुल थी, मैं जीव नहीं सकते, ये जितनी पावर दिखाई देती है ये सब मेरी पावर है, जितनी शक्तियाँ दिखाई देती है ये सब मेरी शक्ति है, कि जितने काम होते हुए दिखाई देते हैं ये सब मेरे पीछे हैं, मैं निकल जाऊंगा मैं चला जाऊंगा तो शरीर काम करना बंद कर देगा, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो जीव को पहचानो, सारी पहचान जीव की करनी है, जीव की पहचान क्यों करना चाहते हो ये बता दो, जीव को क्यों पहचानना चाहते हो, तो मुख्य मार्ग शुरू होता है अपने आप को पहचानना है, तो फिर बाकी द्रव्य क्यों पढ़ा रहे हो, कहीं गलत फहमी नहीं हो जाए, भ्रम नहीं हो जाए, निश्चेत नहीं हो जाए, किसी दूसरे द्रव्य में ऐसा न समझ लेने कि ये मैं हूँ। तो यदि मैं जीव हूँ, आत्मा जीव है, तो ये क्या है, ये कौन सा द्रव्य है? छह द्रव्य पढ़ाऊंगा आपको 15 मिनट। ये क्या है? उद्गल। उद्गल क्या होता है? सूर्य की गाली परिभाषा है, आगे आने वाली है। चलो एक एक सूत्र आगे वाला पढ़ लेते हैं, चर्चा तो करते रहेंगे। रूपेण है उद्गलाह, 5 नंबर का है। रूपेण है उद्गलाह, रूपेण है उद्गलाह। जो रूपी होता है, जो रूपी होता है, जो दिखाई देता है, वो उद्गल है। इसका मतलब जो दिखाई देता है वो जीव नहीं है। मार्मिक बात क्या समझ रही है? इससे सार क्या निकला? रूपी है उद्गला। जो रूपी होता है, जो आंखों से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुद्गल। और वो पुद्गल है, और मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ। इसका मतलब जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर भरोसा हो जाए ना भाई, तो आज ही कल्याण हो जाए। आपको कल आने की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकर सत्संग की जरूरत नहीं पड़े, फिर यहाँ प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं पड़े, सारे काम हो जाए। कितनी सी बात है, कितने मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जी? और उद्गल क्या है? जो दिखता है। ऐसा मतलब जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ। और दिखता क्या है? आईने के सामने जो भी दिखता है। अब बताओ ये मैं हूँ या नहीं? जिसकी फोटो खींची है, बताओ वो मैं हूँ या नहीं? सेल्फी किसकी लेता है? सेल्फी किसकी ले रहा है भाई साहब? सेल्फी ले रहे हैं अपन यहाँ। आपको यदि सच में सेल्फी लेनी हो तो सुबह आना 8 बजे, वहाँ सेल्फी ले ही रहने भाई अपन। आप बैठे अपने आत्मा की चर्चा जहाँ हूँ वो सेल्फ है, और आईने में जो दिखाई दे रहा हो वो नहीं हूँ मैं। और समझ में आ रही है? तो वो क्या है जो आईने में दिखाई दे रहा है? वो पुद्गल है, वो रूपी है। जो जो दिख रहा है वो सब रूपी है। अब बताओ, शेर, शेर देखा आपने? वो जीव है या अजीव? क्या है? जीव है। ये शेर क्या है? शेर का जो आत्मा है वो जीव है। बिल्कुल ऐसे ही जवाब आना चाहिए। मतलब समझ लो IAS लेवल का जवाब है, का जवाब है। ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। अब आगे चलो, दो द्रव्य हो गए। कौन कौन से हो गए? जीव सुंदर दो हो गए। अब धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? धर्म अधर्म क्या है? जैसे सूत्र दिया है आगे, देखो सूत्र दिखाता हूँ आपको। गति स्थित ग्रहो धर्मा धर्मो रुस्तारे है, 17 नंबर। पहली चर्चा आई तो और कर लेंगे थोड़ी बहुत, अभी थोड़ी समझ लो। यहाँ गति आपके पास नहीं है लिखने के लिए? कितना नंबर बताया? 70। गुजराती में 70, हिंदी में 17। गति स्थित ग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारे है, गति स्थित ग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारे है, ठीक है? गति में और स्थिति में उपग्रहो, गति स्थिति उपग्रहो उपकार, धर्म अधर्मयोर उपकारे है। गति में सहयोग तो धर्म ग्रह है, सहयोग धर्म धर्म किसी कहें जिनकी चलने में कहीं की है ना भाई साहब, उसे धर्म धर्म कहते, जो रुकने में कही होगी हो उसे अधर्म धर्म कहते। कौन चला रहा है आप चलते कैसे हैं, आप कैसे चलते हैं बोलो। एक चीज यहाँ से यहाँ तक चली, यह हाथ, यह हाथ यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गमन किया इस हाथ ने, जो हाथ ने यहाँ से यहाँ तक गमन किया कौन ने कराया, सहयोगी कौन था, जो चलने में सहयोगी हो उसका नाम है धर्म द्रव्य, और जो रुकने में सहयोगी हो उसका नाम है अधर्म द्रव्य। आपके समझ में नहीं आए तो आप नोट करो, आप पेन हाथ में लेकर के लिखो, लेकिन पूछे तो जवाब आना चाहिए। धर्म द्रव्य क्या है, गति में सहयोगी। अधर्म द्रव्य क्या है, स्थिति में सहयोगी, रुकने में सहयोगी। तो धर्म द्रव्य चलाता है, धर्म द्रव्य चलाता है, चलाता नहीं, ध्यान रखना भी है, धर्म द्रव्य चलाता नहीं, स्वयं चलते हुए जीवों और भूतगणों को जो चलने में सहयोगी हो उसका नाम धर्म द्रव्य। ये समझ में नहीं आई बात, क्या बताया इसमें, नहीं बताया गाँव को, अब अपने बताया, जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी हो, चलने में सहयोगी, ऐसा कैसे हो सकता है, खुद चले तो धर्म द्रव्य का क्या रोल होगा। एग्जाम्पल बतलाओ, शास्त्रों के एग्जाम्पल बतलाओ, कौन बताएगा, कुछ याद है, हाँ आपको ध्यान है, धर्म द्रव्य के संदर्भ में एग्जाम्पल आपको ध्यान है, आपको ही नहीं पता, बोलो भैया। धर्म द्रव्य के लिए शास्त्र में क्या एग्जाम्पल दिया गया, भाई नमन करता है, नहीं ठीक बात है, लेकिन धर्म द्रव्य के लिए शास्त्र ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे पानी, जल, वाटर, मछली को चलने में सहयोगी है। क्या एग्जाम्पल दिया, पानी मछली को चलने में सहयोगी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या पानी मछली को चलाता है, पानी चलाता नहीं है लेकिन चलने में सहयोगी होता है, तो क्या मछली बिना पानी के चल सकती है कि नहीं, पानी होगा तो ही चलेगी लेकिन फिर भी पानी चलाता नहीं है। इसी तरह से जीव और पुद्गल जब भी गमन करते हैं, जब भी चलते हैं, तो कैसे चलते हैं, चलेंगे कैसे, चलेंगे अपनी शक्ति से, लेकिन धर्म द्रव्य जरूरी है, बिना धर्म द्रव्य के चल नहीं पाए। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है लेकिन चलने में सहयोग करता है, निमित्त होता है, वो धर्म द्रव्य है। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है धर्म द्रव्य के बारे में, और कोई एग्जाम्पल ऐसा किस चीज में, और कौन सही होगी, निमित्त बताओ और चीज बताओ। जैसे हमने दो चीजें कही ना, पानी और मछली, दो बातें कही ना हमने, मछली और पानी, तो मछली चलेगी तो पानी सहयोगी होगा, मछली नहीं चली तो पानी से मतलब नहीं है, और बिना पानी के मछली चल नहीं सकती, जब जब मछली चलेगी तो पानी नहीं चलेगी। जैसे ट्रेन की पटरियां, ट्रेन की पटरियां ट्रेन को चलने में सहयोगी है, बिना पटरियों के ट्रेन नहीं चलती, लेकिन पटरियां ट्रेन को चलाती है क्या, यदि पटरियां ट्रेन को चलाने लगे तो क्या होगा मुझे? ट्रेन रुकेगी नहीं, फिर ट्रेन चलती रहेगी। जहाँ तक पटरियां हैं वहां तक चलती रहेगी, और पटरियां कहीं रुकती नहीं, ट्रेन रुकती हुई पटरियां कहीं एंड होता हुआ नहीं है, कहीं नहीं चलती रहेगी कहीं ना कहीं, तो फिर रुकेंगे नहीं कभी। इसका मतलब पटरियां चलाती नहीं, पटरियां नहीं चलाती है, पहुंचाओ पटरियों को, पटरियां तोड़ दी हमने तो फिर क्या होगा? अब ट्रेन चलेगी क्या? ट्रेन नहीं चल। चलो धर्म द्रव्य किसे कहें जो चलने में सही होगी हो। इसी तरह से पूरे के पूरे लोक में सब जगह पर धर्म द्रव्य एक अकेला फैला हुआ है। इसलिए जब कभी भी हम चलते हैं, जब कभी भी जीव चलते हैं अपनी शक्ति से, जब कभी भी कुदरत चलते हैं अपनी शक्ति से, तो धर्म द्रव्य उसे मिल सकता है। धर्म द्रव्य कैसी? धर्म द्रव्य क्या है? ऐसे ही पढ़ा रहा था मैंने भाई एक बार में, और पढ़ाने के बाद पूरी चर्चा की। सिद्ध बन जाने पर जीव चलता है क्या? आपका प्रश्न है कि चलना तो कुदरत का गुण होगा, जीव का तो नहीं है। जीव भी चलता है क्या? यहाँ जीव भी चलता है। कैसे चलता है जीव? बुद्धि चला पर कैसे जाएगा? अकेला आत्मा जाता है, वहाँ तो कर्म भी नहीं, शरीर भी नहीं, मुक्त हो गया है यहाँ और गमन करेगा सीधा वैसा। शरीर छूट जाने पर विग्रह गति में कैसे जाता है? एक भाव से दूसरे भाव में कैसे जाता है? धर्म द्रव्य है, गमन करने में सहयोगी है, और गमन कौन कर रहा है? गमन तो जीव कर रहा है। आप कह देंगे तब कर्म का योग है, विग्रह गति कर्म योग है। एक सूत्र पढ़ा था अपने दूसरे अध्याय में, विग्रह गति में कर्म के योग से जाता है। ठीक है, ठीक है, जीव अपनी शक्ति से जा रहा है। आप ट्रेन में बैठे हैं, सब लोग बैठे ट्रेन में, बाइक पे बैठे हैं क्या आप लोग? सब टू व्हीलर पे बैठे, चलाया है कभी? चलाया है। पीछे बैठे चलाने वाले के पीछे, पीछे पीछे भी बैठे कभी? ऐसा होता है कि वो बाइक पे बैठे हम पीछे बैठे, हम तो बैठे थे और आगे जो बैठा था उसने एकदम चला दी, वहां एकदम गिरे क्यों नहीं? मतलब पीछे क्यों गए? झटका क्यों लगा? बैलेंस नहीं रहा क्यों? नहीं रहा क्योंकि सही बात यह है, देखो मैं मार्मिक बात कह रहा हूँ, सही बात यह है आप बाइक पर बैठ करके नहीं करते हो, सही बात यह है आप ट्रेन में बैठ करके नहीं जा रहे हैं, ट्रेन आपको नहीं ले जा रही है। जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से हम भी महेंद्र भाई अपनी की अपनी शक्ति से चल रहे हैं। वो चले और हम न चल पाए उस स्पीड से तो हम गिर जाएंगे। वो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से हम उसके पीछे बैठ करके चल रहे हैं, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहे हैं। जीव अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलता है, पुद्गल अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलता है। जीव और पुद्गल के चलने में सहयोगी कौन होता है? सहयोगी होता है वो धर्म द्रव्य। तो बात ठीक है, धर्म द्रव्य तो पूरे लोक में है, चलते ही रहेंगे तो नहीं रुकना चाहें तो रुक भी जाएंगे, रुक सकते रुक सकते, तो कौन रोकेगा? कौन रोकता है? अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य रोकता है, अधर्म द्रव्य रोकता है नहीं। जब जीव और कुदगल रुकते हैं तो रुकने में सहयोगी होता है वो अधर्म द्रव्य। इसके लिए एग्जाम्पल दिए जैसा महेंद्र भाई ने बताया, अभी जेठ माह की गर्मी हो, मई जून महीने में बहुत गर्मी चल रही हो और कोई व्यक्ति रोड पर पैदल चल रहा हो, बहुत तेज तप रहा है, सूर्य बिल्कुल तप रहा है, दोपहर का समय है, एक डेढ़ दो बजा है, दो बजे की भयंकर गर्मी है, बड़ी बेहतर चलते चलते रास्ते में अचानक कहीं किसी पेड़ की छाया आई, तो जब ये छाया की तरफ से निकला तो एकदम क्या हुआ, रुक गया। किसने रोका? छाया ने खुद रुका है, रुका नहीं है छाया ने, तो स्वयं रुकते हुए जो रुकने में सहयोगी हो उसका नाम है अधर्म। अब देखना इम्पोर्टेंट बात, धर्म ग्रंथ चलाता हो और अधर्म ग्रंथ रुकता हो तो क्या होगा, झगड़े होंगे और क्या होगा, एक चलाएगा और एक रुकेगा तो क्या होगा, झगड़ेंगे आपस में लड़ेंगे। धर्म चला रहा है, अधर्म द्रव्य रोक रहा है, तो इस समस्या का समाधान क्या होगा, समझौता कर लो थोड़ा सा। धर्म द्रव्य कहे कि एक कदम मैं चलता हूँ, अधर्म द्रव्य कहे तू एक कदम चल फिर मैं रोक दूंगा, फिर तू एक कदम चलना फिर मैं रोक दूंगा, फिर क्या होगा, बोले एक सेकंड के लिए चलो फिर एक सेकंड के लिए रुको, फिर एक सेकंड के लिए चलो फिर एक सेकंड के लिए रुको। धर्म ने अपना काम किया, धर्म ने अपना काम किया, क्या हालत हो जाएगी, पागल हो जाएगी। इसलिए सही बात तो यह है कि धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं। सहयोग करते कब, सहयोग करते हैं जब आप चलेंगे तब। और देखो जहाँ धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होंगे वहाँ जीव उद्योग गमन नहीं करते, आलोका काश वहाँ गमन नहीं करते। क्या समझ में आएगा, वहाँ जीव क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो जीव क्या है, चेतना वाला उद्गल क्या है, जो दिखता है रूपी। धर्म क्या है, चलने में सही होगी गति। अधर्म क्या है, रुकने में सही होगी। अब आकाश क्या है, स्पेस, स्पेस। तो स्पेस कहाँ है, स्पेस तो साफ जाते हैं ना, स्पेस साइंटिस्ट जो है स्पेस में छोड़ देते हैं, सैटेलाइट कहाँ है बोले स्पेस में, और हम कहाँ है स्पेस में, सब बात कर रहे हो। कोई ऐसे स्पेस की चर्चा चल रही थी कहीं, तो मैंने इस दिन वहाँ बैठे थे बात कर रहे थे वो लोग, उनके बीच में मैंने कह दिया मुकुंद भाई ऐसा कि मैं तो स्पेस में बहुत घूमता हूँ। अच्छा आप स्पेस में ले रहे हो आप, हाँ आश्चर्य हुआ सामने वाले व्यक्ति, स्पेस में गए हुए हो आप, हाँ भाई फिर क्या हो गया इसमें, फिर कब गए थे, मैंने कहा मैं तो स्पेस में ही रहता हूँ। कह क्या रहे हो आप, अरे भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ जहाँ रहते हैं वो स्पेस है, जहाँ छह द्रव्य रहते हैं उसका नाम आकाश है, जहाँ वस्तु रहती है उसका नाम आकाश है। सकल द्रव्य को वाप जात में छहों द्रव्यों के रहने के स्थान का नाम आकाश है। और काल क्या है, काल क्या है, अरे काल, काल आ गया मौत, काल तो क्या होती है मृत्यु को दे रहे काल को, अरे भाई साहब मौत आ गई काल आ गया, नहीं भाई टाइम, टाइम टाइम जो समय है उसका नाम है काल। परिवर्तन करना सहयोग करना वो उसका काम है। तो इस तरह छह द्रव्यों की बहुत संक्षेप में बात की है मैंने, इन्हीं छह द्रव्यों की चर्चा ये सब यहाँ की है और ये चर्चा आई है पूरे इसी में, पूरे अध्याय में चर्चा है। वैसे तो इन्हीं छह द्रव्यों को समझाएंगे तो एक बार नाम बता दो पहले मेरे को, आप कौन बताएगा छह द्रव्यों के नाम, खाने के लिए उठने वाले हैं अपन, छह के नाम भैया याद है बोलो, और अच्छे आप भी बता दो, और आकाश, और एक और बच गया काल, அதே அதை வாபஸ் தோற வாபஸ் ரெடி பண்ணுவார். ஜீவ் கால் கால் எங்க ஒரு முழு வாபஸ் ஆகாஷ் ஒரு கால் முழு வாபஸ் ஆகாஷ் ஒரு கால் ஆகாஷ் ஒரு கால் ஆகாஷ் ஒரு கால் அது வாபஸ் பூச்சிமா முன்னணி لیکن نام یاد رکھنا کھاتے کھاتے بولتے رہنا کیا کہ میں ہوں جیو کھاتے کھاتے کیا یاد رکھنا ہے میں ہوں جیو جو کھاتا ہوا دکھ رہا ہے یہ ہے فضل جو کھانے والے کو جاننے والا ہے وہ جیو جو تھالی میں رکھا ہوا تھا وہ اٹھ کر کے یہاں تک گیا اس میں دھرم دربے نمت تھا اور یہاں آ کر کے رک گیا اس میں ادھرم دربے اور بھوجن جہاں رکھا ہے وہ سب جگہ ہے آکاش اور اس میں جو پریورتن ہو رہا ہے وہ ہے کال کا کام تو یہ بھوجن کرتے کرتے یاد رکھنا پھر بھوجن کی بات پوچھوں گا آپ سے